तुम्हारा गुस्सा हमेशा मुझ पर ही क्यों निकलता है? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कंट्रोल कर सकूं। उसे फोन करो और पता करो कि वो कहाँ है, उसके डैड ने हंसकर कहा। उसकी माँ उसे फोन करने लगी। पहली बार बेल जाती रही, उसने फोन नहीं उठाया। उसकी माम ने दूसरी बार फिर फोन किया, इस बार उसने पहली बेल पर ही उठा लिया। सॉरी मॉम, मैं वॉशरूम में था। कहाँ हो बेटा? खाने का टाइम हो रहा है। मैं पेंटहाउस में हूँ, आज मैं नहीं आ रहा। प्लीज बात बात पर फोन मत किया करो, मुझे ऐसे जवाब देना पसंद नहीं, कहते हुए वेद ने फोन काट दिया। क्या हुआ, क्या कहा उसने? उसकी माँ उदास हो गई तो उसके डैड ने पूछा। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मालूम नहीं क्या हो गया, किसके साथ लड़ाई हुई है। वो नहीं आएगा आज भी घर, पेंटहाउस पर रहेगा। आपको क्या जरूरत थी उसे पेंटहाउस गिफ्ट करने की? अब वो घर नहीं आने वाला, उसकी माम उसके डैड पर गुस्सा हो गई। अगर उसके पास अपना पेंटहाउस था तो उसमें चला गया, अब हमें पता है वो वहां पर सेफ है। मैंने वहां पर सभी काम वालों का भी इंतजाम कर दिया है, किसी होटल में रहने से अच्छा है कि वो वहां है, तो अब हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने सोच समझकर उसके लिए पेंटहाउस तैयार करवाया है। ये तो आपने ठीक किया, उसकी माम कहने लगी। अब तक तो मैंने ठीक किया नहीं किया था, अब तुम मेरी बात से सहमत हो, तुम अपना मूड ठीक करो, उसके डैड ने कहा, वो उसकी माम को समझाने। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मेरे मूड की कोई बात नहीं है, उसकी माम ने कहा। वेद अपने पेंटहाउस में बैठा हुआ था। वो अपने बेडरूम में चेयर पर बैठा था और ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। वो उस लड़की को भूलना चाहता था। पिछले 5 सालों से वो हर रात उसके सपने में आती थी और आज उसके ऑफिस में उसी का इंतजार कर रही है। वो सोचता था कि पता नहीं क्या हुआ होगा उसका, मगर वो पहुंची हुई थी, उसने वेद को ढूंढ लिया था। वेद का सिर घूम रहा था, वो अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसके फ़ोन पर कितनी सारी मिस कॉल थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, सिर्फ अपनी माम का फ़ोन उठाया था। माम के बाद जब मलिक का फ़ोन आया तो उसने उठा लिया। कहाँ हो तुम? मैं तो क्लब में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ रहा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, वेद ने कहा। मैं अपने पेंटहाउस में हूँ, मेरे पास तुम्हारी कल की खूबसूरत फ्रेंड है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है, दिल नहीं लग रहा उसका तुम्हारे बिना, तो तुम्हारे पेंटहाउस पर भेज देता हूँ, तुम्हारा सिरदर्द भी ठीक हो जाएगा, उसने हंसकर कहा। ठीक है, भेज दो, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ, वेद ने कहा। अच्छा है वो आ जाए, मैं इस लड़की को भूल जाऊँ, उसके साथ मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। पिछली रात वेद भी भुला नहीं था, तकरीबन आधे घंटे में ही वो वहां पहुंच गई थी। वेद ने पेंटहाउस का दरवाज़ा खोला। लगता है मेरे बिना मन नहीं लगा तुम्हारा, मेरे पेंटहाउस में तुम्हारा स्वागत है, वेद ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों तरफ उसके बेडरूम की तरफ जाने लगे थे। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने पैरों की हील उतार दी और सोफे पर बैठ गई। मुझे नहीं पता था तुम वेद मेहरा हो, तुमने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो सुनकर हैरान हो गई, शनाया आहूजा ने कहा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं वेद मेहरा हूँ जा कोई और? वो भी उसके साथ सोफे पर ही आ गया था। पहले मैं हम दोनों के लिए ड्रिंक बनाती हूँ, वो उठकर ड्रिंक बनाने लगी। जानते हो बेबी, एक ही रात में तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया। शनाया आहूजा का दिल आज तक किसी पर नहीं आया था, मगर एक ही रात में तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ड्रिंक पीने के बाद एक दूसरे के नज़दीक होने लगे, वो दोनों काफ़ी नशे में हो चुके थे। शनाया वेद को किस करने के लिए उसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा लेकर गई। जैसे ही वो उसे किस करने लगी, वेद ने उसे धक्का दे दिया। वेद को उस लड़की में मानवी का चेहरा दिखाई देने लगा। तुम जहां पर क्या कर रही हो, पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैंने कहा तुम जहां पर क्या कर रही हो, उसने शनाया को धक्का दे दिया। पागल हो गए हो क्या? वो नीचे गिर गई। शनाया सोफे से नीचे गिरी हुई पड़ी थी, उसे समझ नहीं आया था। सॉरी, वेद ने उसे उठाते हुए कहा। तुम जाओ जहां से, मैं ठीक नहीं हूं, वेद ने उसको वहां से भेज दिया था। मुझे उस लड़की से साफ साफ बात करनी है, मैं उसे ऑफिस से निकाल दूंगा। ऐसे ही उसने पूरी रात गुजारी थी, एक मिनट के लिए भी मानवी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। रात को वो ठीक से नहीं सोया। शनाया के जाने के बाद भी वो कितनी देर तक ड्रिंक करता रहा। सुबह उसकी बहुत देर से आंख खुली। रात को ज्यादा पीने की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया था। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो जैसे तैसे उठा, वॉशरूम में गया, चेहरा धोया और वो नीचे आ गया। वो चाय पीना चाहता था, तो अब मुझे चाय भी खुद बनानी पड़ेगी। वो किचन में जाता हुआ अपना फोन देखने लगा। वो मैसेज चेक कर रहा था। उसके डैड का मैसेज था। उसके डैड ने कोई नंबर सेंड किया था। तुम्हें तुम्हारे घर के काम करने वाले लोग इस नंबर पर मिल जाएंगे, फोन कर देना, खाना बनाने के लिए कुछ देर पहुंच जाएगा और वो साफ सफाई भी करवा देगा। वो अपने डैड का मैसेज देखकर मुस्कुराया। सचमुच मेरे डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं, उन्हें पता है उनके बेटे को क्या चाहिए। उसने फोन किया तो वेद का कुक वहां पहुंच गया था। क्या मुझे ऑफिस जाना चाहिए? उसने अपनी कंडीशन को शीशे में देखा। मेरा दूसरा दिन है ऑफिस का, मैं ऐसे ऑफिस नहीं जा सकता, क्या इंप्रेशन रहेगा मेरा? क्यों ना मैं आज ऑफिस जाने की जगह मॉल जाऊं और वहां का काम देखूं।
वैसे भी वो फ्रेश होना चाहता था, आज उस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो तैयार होकर मॉल के लिए निकल गया था। एक बार मॉल पहुंचा तो वो मॉल में इतना बिजी हुआ कैसे वो रात हो चुकी थी, मगर वो अपने काम से खुश था क्योंकि आज उसका जाना जरूरी था। शाम को आज उसने पेंट हाउस जाने की जगह वो अपने घर चला गया। क्या बात है भाई, आज तो आप घर आ गए, उसे देखते ही वेदांत ने कहा। चलो अच्छी बात है, आज वैसे भी हम सब लोग सगाई की प्लानिंग कर रहे हैं, तो तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें भी होना चाहिए, उसकी चाची ने कहा। अच्छा तो फिर कब की है सगाई, वेद ने कहा। 15 दिन रह गए हैं सगाई में, उसकी माम कहने लगी। तो फिर तो दिन ही बहुत थोड़े रहते हैं। और नहीं तो क्या, 15 दिन रह गए सगाई में और पूरी तैयारी रहती है, उसकी छोटी चाची मौली कहने लगी। तैयारी तो लड़की वालों को करनी है और वो बेचारे तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी तो पूरी फैमिली जयपुर पहुंच चुकी है, उसके चाचा ब्रिजेश ने कहा। लड़की वाली दिल्ली की कोई बिजनेस फैमिली थी और उनका संबंध राजस्थान जयपुर से था, तो वो अपने शहर में शादी करना चाहते थे। जयपुर में उनकी कोई हवेली थी, वहीं पर शादी होनी थी। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग शादी करने वाले थे। अच्छा तो सगाई जयपुर में हो रही है, वेद ने पूछा। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उसके डैड कहने लगे। और हाँ वेद, तुम्हारे भी कोई फ्रेंड हो तो बुला लेना, शादी में उसके चाचा रमेश कहने लगे। ये किया और सिया कब आएंगी, रीना बीच में बोली। 2-3 दिन में आ जाएंगी, रीना की सास रूपा ने कहा। वैसे भी उन लड़कियों ने अपनी तैयारी कर रखी है, दोनों ही सेकंड ईयर में पढ़ती थी और दोनों ही कॉलेज ट्रिप में गोवा गई हुई थी। वेद, तुम सगाई और शादी के लिए कपड़े बनवा लो, जहां पर बहुत से लोग तुमसे पहली बार मिलेंगे, उसकी माम कहने लगी। बिल्कुल, क्या पता कोई लड़की वेद को भी पसंद आ जाए वहां पर।
बिल्कुल तुम जैसा, जब तक मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिला था। प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और भी ना भूलें।